ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हमारे पिछले भाई ब्रह्मा भव भवंता च मानवा विबुद्ध ईश्वरा विभूतया मम हि एता भूतानां भूते हेतवा। ब्रह्म भुवो भवंतरश्च मन्वो विभूतेश्वरा विभूतयो मम महितोता भूतानां भूति हेतवा। ब्रह्म भुवो भवंतरश्च मनवो विभूतेश्वरा विभूतयो मम महेता भूतानां भूति हेतवा। ब्रह्म भुवो भवंतरश्च मनवो विभूतेश्वरा विभूतयो मम महेता भूतानां भूति हेतवा। शब्दार्थ दोहराइए। ब्रह्मा ब्रह्मा भव शिव भवन्तः तुम सारे प्रजापति च तथा मनवा सारे मनु विभूतेश्वरा विभिन्न देवता विभूतया शक्ति का विस्तार मम मेरा ही निसंदेह एता ये भूतानां सारे जीवों का भूति कल्याण के हेतवा कारण। ब्रह्मा शिव मनुगण उच्च लोकों के अन्य सारे देवता तथा जनसंख्या बढ़ाने वाले तुम सारे प्रजापति सारे जीवों के लाभार्थ कार्य कर रहे हो। इस तरह मेरी तटस्था शक्ति के अंश रूप तुम सभी मेरे गुणों के अवतार हो। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा श्रील प्रभुपाद की भगवान के नाना प्रकार के अवतार या अंश हैं। उनके स्वयं के या विष्णु तत्व के अंश स्व अंश कहलाते हैं, जबकि सारे जीव जो विष्णु तत्व नहीं अपितु जीव तत्व हैं विभिन्न अंश कहलाते हैं। यद्यपि दक्ष प्रजापति ब्रह्मा तथा शिव के समान स्तर पर नहीं है, किंतु उनकी तुलना उनसे की जा रही है क्योंकि वे भगवान की सेवा में लगे रहते हैं। भगवान की सेवा में ऐसा नहीं होता कि ब्रह्मा को अत्यधिक बड़ा माना जाए, जबकि भगवान की महिमा का प्रचार करने वाले को सामान्य मनुष्य को अत्यंत निम्न माना जाए, ऐसे अंतर नहीं होते। कोई चाहे भौतिक दृष्टि से उच्च हो या निम्न हो, जो कोई भी भगवान की सेवा में लगा हुआ है वह उन्हें आध्यात्मिक दृष्टि से अत्यंत प्रिय है। इस संदर्भ में श्रील मध्वाचार्य तंत्र निर्णय से यह उद्धरण देते हैं, विशेष व्यक्ति पात्रत्वाद ब्रह्मदास्तु विभूतया तदंतय मीणश्चैव मत्स्याद्य विभवा स्मृतः। ब्रह्मा से लेकर सारे जीव जो भगवान की सेवा में लगे हैं असाधारण हैं और विभूति कहलाते हैं, जैसा कि भगवान ने भगवत गीता में कहा है, यद् विभूति मतः सत्वम् श्रीमद् विजितम् मेव वा तद्देवाव गच्छत्वम् मम तेजो स संशय संभवा। तुम जान लो कि सारा ऐश्वर्य सौंदर्य तथा तेजस्वी सृष्टियां मेरे तेज से एक स्फुलिंग मात्र से उद्भूत है। भगवान की ओर से कार्य करने के लिए विशेष रूप से शक्ति प्रदत्त जीव विभूति कहलाता है, जबकि भगवान के विष्णु तत्व अवतार यथा मत्स्य अवतार विभव कहलाते हैं। केशव धृता, तो आप सबका स्वागत है आज के श्रीमद् भागवतम क्लास में। सब में सब आ गए और हंस गुहियों की प्रार्थनाएं चल रही हैं श्रीमद् भागवतम के इस छठे स्कंद के चौथे अध्याय में, और विशेषकर प्रचेताओं के बाद जो है अब प्रजापति के साथ बातचीत चल रही है। प्रजापति जिनको कि प्रजा के पति अर्थात प्रजा को उत्पन्न करने वाले कहा जाता है, तो ब्रह्मा शिव ये सब प्रजापति ही कहलाते हैं, क्योंकि ये सब प्रजा बढ़ाने के लिए ही हैं। और इसमें इन प्रजापतियों को जो है विशेष शक्ति प्राप्त होती है भगवान की तरफ से, जो जिस प्रकार का कार्य कर पाते हैं। यहाँ जो प्रजापति हैं वो प्रचेतस के पुत्र हैं, और इन्होंने जो है लगभग 10,000 आगे चल के बता सकते संतानों की उत्पत्ति की, और उनको भेजा एक नारायण सर्वास करके जगह एक जगह थी, उधर भेजा कि तपस्या करें आप। तो इतनी अच्छी जगह थी, इतना सुंदर धाम था कि उन्होंने तपस्या करी, रोज स्नान करते थे। स्नान अगर कोई वैसे भी रोज करता है तो वैसे ही पवित्र रहता है, दिन में 2 बार करे 3 बार करे, तो जब इस प्रकार का एक्सटर्नली भी प्यूरिफाई रहता है, इंटरनली भी प्यूरिफाई होना शुरू हो जाता है, क्योंकि सद विचार और ये सब चीजें जो है मोड ऑफ गुडनेस में रहने के कारण। तो उधर तो वो स्नान कर रहे थे और धीरे धीरे उनका जो कलमश था, कंटामिनेशन था, अगर हुआ भी तो सब समाप्त हो जाता है, प्यूरिफिकेशन बढ़ जाता है। इसलिए अब ज्यादातर देखेंगे लोग जो भक्ति करना चाहते हैं, तपस्या करना चाहते हैं, गंगा के किनारे मिलेंगे ऐसे लोग आपको, यमुना के किनारे मिलेंगे, स्नान रोज करेंगे, धीरे धीरे उनका शुद्धिकरण होता जाता है। और ये एक बहुत जरूरी है किसी भी साधक के लिए कि वो नित्य प्रति स्नान करे, और स्नान से उसका फायदा क्या होगा कि वो शुद्ध होगा बाहरी तौर पर भी, और धीरे धीरे अंदर तौर पर भी सदोगुण जब उसके अंदर वृद्धि होगी। तो नारद जी पहुंचे, और नारद जी का जो काम है, हमारी पूरी परंपरा में प्रभुपाद जी कहा करते थे जिस प्रकार नारद जी को श्राप, इसी में श्राप भी मिला नारद जी को आगे। नारद जी ने जो है जब देखा कि ये बड़े क्वालिफाइड बच्चे हैं, 10,000 बच्चे, और बहुत तपस्या करके बहुत शुद्ध हो चुके हैं, तो इनको जो है ज्ञान देना चाहिए। नारद जी का प्रचार करने का तरीका बड़ा सुंदर है, चाहे उन्होंने प्राचीन ब्रही को करा पुरंजन के हिसाब से, आपने देखा होगा पुरंजन कथा में कि एक इस प्रकार का मनमोहक सुंदर सी एक स्टोरी बनाते थे किसी को भी समझाने के लिए, और शरीर और आत्मा और ये पूरी सृष्टि को शरीर से ही, मतलब शरीर के एक एक रेफर करते थे इस तरह चीजों को, कि जो उसी शरीर का एक एक अंग ही जो है उस स्टोरी से मिलता था। अगर अपने पुरंजन की कहानी याद हो तो उसमें भी पूरे शरीर को वो जो भोगता है, जो एंजॉय करना चाह रहा है, वो चाह रहा है नव द्वार के एक शरीर में एंटर कर गया, वो शहर ऐसा है ना, उसमें जो बाल है वो पेड़ वृक्ष है, नदियां हैं, सुंदर सुंदर जो है उन्होंने इस प्रकार एग्जाम्पल देकर चीजें समझाई। तो नारद मुनि जी का ये बहुत सुंदर एक तरीका है प्रचार करने का। तो यहाँ पर जब 10,000 पुत्र मिले उनको, तो उनको भी इसी तरह कहानी सुनाई उन्होंने, एक कहानी सुनाई कि एक बहुत विशेष छिद्र है, एक व्यक्ति है और एक उसको प्रोस्टिट्यूट मिलती है, तो फिर बाद में वो जो अच्छा इनको बताया नहीं इस तरह, जैसे तो हमको प्रभुपाद जी तो परपट में बता देते हैं पुरंजन की कथा में कहां पर कौन सी चीज कैसे है, आखिरी में भी पता चलता है, लेकिन प्रभुपाद जी साथ साथ बता रहे हैं ताकि व्यक्ति कंफ्यूज ना हो। तो इस स्टोरी में भी 10,000 शिष्यों को जब बताया इन्होंने, तो वो इतने समझदार हो चुके थे तभी नारद जी उनके पास आए थे, तो उन्होंने अपने भी समझ लिया कि ये सब किस चीज का मतलब क्या है, और फिर इस तरह के इंस्ट्रक्शन के बाद वो 10,000 के 10,000 पुत्रों ने जो है क्या किया कि भाई फायदा नहीं है, है ना, गृहस्थी बढ़ाने का, तो उन्होंने क्या करा, सारे के सारे एक साथ फुल टाइम हो गए। और इसकी सूचना जब मिली उनको दक्ष प्रजापति को, तो अचंबा तो हुआ उनको, क्रोध भी आया, लेकिन कहा कोई बात नहीं, भक्तों का गुण है सहन करना, उनने सहन किया। और फिर 1000 संतान और प्रकट किए, 1000 संतान, और इनको भी जो है ये भी इनको वहीं भेजा स्नान करने के लिए, तुम जाओ तपस्या करो उसी जगह। ये भी बेचारे रोज स्नान करते थे, रोज तपस्या करते थे, भगवान से प्रार्थना करते थे और शुद्ध हो गए। अब ऐसे प्लेटफॉर्म पर कौन नहीं खेलना चाहेगा। हम लोग भी क्या चाहते हैं, फेवरेबल कंडीशन चाहते हैं ना प्रचार करने के लिए। आप थोड़ी के मायावादियों के बीच में जाओगे जहां पर हर भगवान है क्या हमें बताओ, ज्योति है, वैसे थोड़ी जगह प्रचार करोगे, स्लाइड शो दिखाओगे उसको, नहीं कर सकते। आपको चाहिए फेवरेबल कंडीशन, ऐसा कॉलेज या ऐसी परिस्थितियां जहां पर सारे लोग फेवरेबल हों। उसमें दो चार भी अगर ऐसे आ जाएं जो हर बात पे हाथ उठाएं और बड़े आर्गुमेंट वे में क्वेश्चंस करें, तो बड़ा मुश्किल हो जाता है ऐसी जगहों पर। तो आप खुद चाहोगे कि हम प्रचार करें तो ऐसी अवस्था में करें, ऐसी जगह पे करें जहां पर कम से कम लोग सबमिसिव हों, मेड ऑफ गुडनेस में हों, बात मानते हों, तो वहां प्रचार करना बहुत आसान है। तो कंडीशन हम लोग ऐसे चाहते हैं, प्रभुपाद जी को तो ऐसी कंडीशन की कोई परवाह नहीं थी, इसलिए वो जहां पर भी गए हर जगह मायावाद का जो तोड़ जो है तिरस्कार करते थे उन सब चीजों का, और खूब डंडे के जोर पर प्रचार करते थे। तो फेवरेबल कंडीशंस में प्रचार करना ज्यादा अच्छा रहता है। तो नारद मुनि जी को फिर भी ये भी फेवरेबल कंडीशन लगे, रहे 1000 बच्चे और आ गए चलो मोर टेम्पल है, तो उनको भी जो 1000 बच्चों को भी यही सब सुनाई कहानी इसी तरह की, उनको भी लगा रहे जीवन का उद्देश्य इसमें थोड़ी है। उन्होंने बोला कि क्या फायदा जीवन को इस प्रकार अननेसेसरली और बढ़ाने का और लैगेज को साथ इकट्ठा रखने का, तो एक बार व्यक्ति चला जाए तो फिर इट्स वेरी डिफिकल्ट टू कम बैक, बहुत मुश्किल होता है उस गृहस्थी से, उस गृहस्थ जीवन से वो करना, जब तक कि कोई बहुत अच्छे भक्तों के संरक्षण में नहीं रह रहा या कर्म करने की विधि नहीं सीख रहा उनसे तब तक। तो इस प्रकार वो 1000 बच्चे भी जो है ज्वाइन कर लिया उन लोगों ने भी, तो इस पर बहुत चढ़ा गुस्सा उनको प्रजापति को, पर अब सहन नहीं हुआ उनसे, और उन्होंने ऐसी खरी खोटी सुनाई नारद जी को। हमारे कुछ प्रचारक वो सारी खरी खोटी मैं पढ़ रहा था तो मुझे लगा रही है तो हम सुन चुके हैं सारी बातें ये सारी गालियां तो सुन चुके हैं हम लोग जब किसी के परिवार से कोई भक्त बन जाता है तो वो सारी बातें लिखी हैं प्रजापति ने। बड़ा दिल में बड़ी चोट लगी उनको, कहा कि तुम्हें प्रचार करना ही नहीं आता, कह रहे हैं कि कैसे निर्दयी हो तुम, तुमने उन बच्चों का जीवन का सुख, उनका जो वास्तविक सुख है, क्योंकि माता पिता बच्चों को किस लिए पालते हैं, ताकि वो एंजॉय कर सके, सुख भोग सके, तुमने उनको लेने नहीं दिया है ना। तो प्रजापति का कहना था कि ऐसा थोड़ी होता है, इतनी भी भक्ति थोड़ी, भक्ति की अति थोड़ी होनी चाहिए, धीरे धीरे ज्ञान अर्जित करे, अपना कर्म करे, कर्म का फल त्यागे, हैं धीरे धीरे जैसे मैं कर रहा हूं तो इस प्रकार उनको बड़ा गुस्सा आया कि 11000 का जो है सगन भगवान को चला गया, और तो समर्पित हो गए सारे के सारे। फिर उन्होंने जो है कुछ और, अब उन्होंने कहा मैं अच्छा लड़के पैदा करके तो दिक्कत बड़ी है, ब्रह्मचारी बन जाते हैं, लड़कियां पैदा करता हूं, तो उन्होंने 60 लड़कियां पैदा करी, कहा अब करो इनको फुल टाइम अगर ये हो गई तो फिर ब्रह्मचारी नहीं जो प्रभुपाद जी के समय पर हुआ करता था इस प्रकार, तो मंदिरों में जब बच्चे आते थे तो विदेशी कल्चर आप जानते ही, मुझे एक भक्त बता रहे थे जो विदेश में चले गए, वो जब यहाँ पर आए तो उन्होंने कहा कि मंदिर बड़े सूखे रहते हैं कई बारी, और संडे क्लास के लिए, संडे फीस्ट, लव फीस्ट के लिए जब आते हैं लोग, कीर्तन का इंतजार कर रहे होते हैं, फिलोसफी कितनी अच्छी लगती है, तो कीर्तन का इंतजार, जैसे कीर्तन शुरू होता है तो वो लोग अपने अपनी गर्लफ्रेंड्स के साथ जो है हाथ में हाथ डाल के नाचते हैं कई बार मंदिर के अंदर ही, है ना, हाथ पकड़ के बैठते हैं, इकट्ठे ही बैठते हैं, यहाँ तो गार्ड है, वो कहते हैं माता जी आप इधर हो जाइए, प्रभु जी आप इधर हो जाइए, भारत का कल्चर थोड़ा तो है। तो उधर वो कहते हैं ऐसी होता है, और कहते हैं कई बार अलग तरह के दृश्य भी देखने को मिलते हैं। तो छत्ता लेकिन हम रोक नहीं सकते, इनको भी मना कर देंगे तो फिर मंदिर खाली हो जाएंगे। तो वो आए, देखें भगवान को, राधा कृष्ण को देखें, कथा सुने, कुछ तो दिमाग में आएगा, फिर आगे बढ़ जाएंगे। तो प्रभुपाद जी के समय पर ऐसे होता था, कई बार शिकायतें आती थी, प्रभुपाद ये सब जो है कुछ माताएं जो है इस तरह अट्रैक्ट करती हैं भक्तों को, उससे कई है ब्रह्मचारी जो लोग गृहस्थ में जा रहे हैं। तो प्रभुपाद जैसे बातचीत चलती थी, प्रभुपाद कहते कि एवरी मैन शुड बिकम ब्रह्मचारी, यू शुड रिमेन ब्रह्मचारी एंड ऑल गर्ल शुड मैरी। तो उन्हें यही कैसे हो सकता है, कहते यूज योर इंटेलिजेंस। तो बात ठीक है कि अगर हो सके तो ब्रह्मचार्य का पालन करना चाहिए। ब्रह्मचार्य का पालन अभी तो समाज में बड़ा अजीब सा लगता है लोगों को कि भाई ये मतलब जो कि वैसे बताए जाते हैं ब्रह्मचारी की जो एज है लगभग 25 वर्ष तक उसे ब्रह्मचार्य का पालन करना चाहिए, चाहे वो लड़की हो चाहे लड़का हो। उसके बाद अगर दूसरा उसका जीवन का जो पड़ाव है गृहस्थ जीवन में जाना चाहिए पूरी ट्रेनिंग के बाद, और केवल 25 साल गृहस्थ जीवन में रहने के बाद उसमें भी इसकी इतनी सारी सेवाएं हैं, थोड़ी सी इंद्रत्ति शास्त्रों के अनुकूल, और उसके बाद धन कमाना, बाकी तीनों आश्रमों को पालना, ब्रह्मचार्य को, वानप्रस्थ को और सन्यास को। तो ये सब सेवाएं सारी की सारी जिम्मेवारी उस 25 साल में निभानी है, पूरे समाज को भी देखने, अपने परिवार को भी देखने, रिलेटिव्स को भी देखने, दान भी देने, और कहीं अगर टाइम मिले तो रेगुलेटिव वे में क्या करना है, इंद्रियतृप्ति, संतान की उत्पत्ति, भगवत भक्त की इच्छा, ताकि वो भगवान का भक्त बन सके। तो इस प्रकार शास्त्र के अकॉर्डिंगली जो है व्यक्ति को चाहिए कि, कहते तुम हर जगह घूमते रहते हो बट तुम कभी अपना घर ना बना पाओ, ये उनको दिया था। उन्होंने कहा थैंक यू वेरी मच। कारण प्रभुपाद जी भी कहते हैं कि हम सब क्योंकि नारद जी की ही परंपरा से आ रहे हैं, तो इसलिए हमारे साथ भी यही अप्लाई होता है, हम लोग भी कहीं एक जगह टिकना नहीं चाहिए हमें, इसलिए प्रभुपाद जी भी कहीं टिकते नहीं थे। 12 साल में लगभग 14 बार पूरे ब्रह्मांड का अर्थात पूरे संसार का उन्होंने भ्रमण किया और 108 मंदिर इत्यादि खोले। तो प्रचारक को चाहिए कि वो ट्रेवल करते रहे, संन्यास जिनको प्राप्त हो जाता है, और प्रभुदाता देश अर्थात जो गुरुजन सेवा बताते हैं वही उसके जीवन का
जो है लक्ष्य होना चाहिए। क्योंकि कई बार बताया जाता है कि ब्रह्मचारियों को तो ये करना चाहिए, ये ऐसा करना चाहिए, भक्तों को तो ऐसा बैठना चाहिए, ऐसी जगह जाना चाहिए, ऐसा करना चाहिए, शास्त्रों में लिखा है सब। लेकिन 64 भक्ति के अंगों में अगर आप पहले 5 अंगों की तरफ देखेंगे तो ये 5 अंग जो है ज्यादातर भक्त लोग नहीं पालन कर पाते। गुरु पाद आश्रय, गुरु की सेवा करना, गुरु के शिक्षण को फॉलो करना, ये बहुत मुश्किल लगता है। कारण क्या है कि इस आध्यात्मिक जगत और भौतिक जगत में एक अंतर है। आध्यात्मिक जगत में सारे के सारे लोग एक ट्यूनिंग में चलते हैं। ऊपर अगर आप गोलोक वृंदावन धाम की बात करें तो वहां पर भी युथेश्वरी जो है, जो कि गोपियां हैं, जो मंजरियां इत्यादि हैं, वो सब के सब एक मूड में और एक फाइन ट्यूनिंग में काम करते हैं सब। और सब जो है जैसे हम लोग सुबह जो मंगला आरती भी गाते हैं तो बड़ा गहरा मतलब है मंगला आरती का जो गुरु अष्टकों हम गाते हैं। और मेरे ख्याल से हमें कई बार जानकारी देनी चाहिए लोगों को, क्योंकि हमने देखा है कि मंगला आरती में कई भक्त लोग बस एक उसको एक रिचुअल की तरह लेते हैं, उस अष्टक को, उसके भाव को, उसके मीनिंग को मेरे ख्याल से कई लोगों ने पढ़ा भी ना हो शायद हिंदी में। हमारे में कुछ भक्त होंगे ऐसे, हो सकता है हाथ नहीं खड़ा करवाएंगे, लेकिन पढ़ा होगा, एक बार पढ़ा होगा गुरु अष्टक का मतलब, दो बार पढ़ा होगा, लेकिन अब पता भी नहीं होगा क्या है।
اس لیے جب ہم لوگ دیکھتے ہیں منگلا آرتی میں تو کئی لوگ گرو اشٹ کے سمے کہیں دیکھ رہے ہیں, کسی کا درشن کر رہے ہیں یا کچھ اور بھاؤ چل رہا ہے من میں. تو اگر مطلب سمجھ کے کریں تو بہت زیادہ اس کا پربھاؤ پڑے گا. جو ہم بول رہے ہیں اگر اس پر میڈیٹیٹ کریں کہ ہم کیا سینٹینس بول رہے ہیں اس میں, سنسار داوا جیسے نے لاسٹ میں بولا, ایک بار بتایا وہ سنسار داوا نل لی ڈھلو کا جب شبد بولا جاتا ہے تو یہ اس ٹائم تو آدھے لوگ پرنام ہی کر رہے ہوتے ہیں, پہلے دو تین لائن میں پرنام ہی ختم ہوتا ہے ویکتی کا. تو بہت امپورٹنٹ لائن ہے, فرسٹ لائن, سیکنڈ لائن, تھرڈ لائن. شری رادھا رادھے کرن بھگوان کی جائے, شری شری کرشن بلرام کی, شری شری جگنناتھ بلدیو سوتم. بہت گہرا مطلب ہے سنسار داوا نل لی ڈھلو کا. یہ سنسار جو ہے ایک داوانل کی طرح جو ہے ہر سمے اس میں آگ لگی ہوئی ہے, جھلس رہے ہیں ہر ویکتی. لیکن پہلی دو لائنوں میں ہم تو جھلستے نہیں, ہم تو بڑے کانفیڈنٹ زمین پہ لیٹ کے پرنام اس میں کر رہے. تو دوسری لائن گرو کے لیے, پہلی لائن سارا گرو اشٹم گرو کے لیے ان کی ٹرانسینڈنٹل ایکٹیویٹیز کو میڈیٹیٹ کرنے کے لیے, اس پر دھیان دینے کے لیے, ان کی استھتی کو بھگوان کی لیلاؤں میں دیکھنے کے لیے, ان کی کیا استھتی ہے. اور اس پرکار جب ان کی ان ایکٹیویٹیز پر میڈیٹیٹ کرتے ہیں گرو جن کی, تو ہمارا فیتھ, ہمارا جو ہردے ہے تب کرتجیا سے تب بھرتا ہے کہ کس پرکار ہم جیسے کنڈیشن سولز کو گرو نے ایکسپٹ کیا اور کس پرکار ہم لوگ پرمانک سمپردائے میں اسی لائنیج میں اسی گرو پرمپرا میں جو ہیں جڑ گئے. تو ایک ایک ایکٹیویٹی میرے کو چاہیے, ہم چاہتے ہیں, ہمیں چاہیے کہ ہم لوگ دو تین بار پڑھیں اس کو ٹھیک پرکار سے, اس کو میڈیٹیٹ کریں, اور ایون گرو اشٹکم سمے ویکتی کو دھیان دینا چاہیے ان سب چیزوں, اس سے بڑا فائدہ ہوگا سب. تو اس پرکار جو ہے گرو جن جو ہم نے بتا رہے تھے کہ بھکت لوگ جو ہیں پہلی پانچ ودھیاں جو ہیں 64 انگوں میں ان کو بھی دھیان پورک نہیں کر پاتے ہیں, اور پھر اپنا لگ بھگ کافی سمے ان کا اس چیزوں میں ویتیت ہوتا ہے جو کہ ادھیاتمک لگتا ہے, ادھیاتمک دکھتا ہے, لیکن اس سے اس گتی سے شدھیکرن نہیں ہوتا جس گتی سے گرو کے آدیش پر گرو کے نرکشن میں رہ کر کیا جا سکتا تھا. یہ ویکتی کو تب پتا چلتا ہے جب وہ کافی سمے اپنا اس پرکار بتاتا ہے, انیتھا جو ویکتی بھکتی کے نیموں کا پالن کرنے کا پریاس کر رہا ہے لیکن اس پرکار شاستر کے حساب سے نہیں چل رہا, ارتھات گرو کے نردیشن کے انوسار نہیں چل رہا, تو تب دقت آتی ہے بھکتوں کو, سادھکوں کو. انیتھا بتایا گیا ہے جتنا بھی ہم لوگ جتنا بھی سمے ہم بتانے والے ہیں اس دھرتی پر, جو بھی ہمارا سمے ہے, وہ سمے اگر ہم لوگ ٹھیک پرکار سے بتانا چاہتے ہیں بھکتی میں, تو وہ ہونا کیا چاہیے, گرو پاد آشرے کے اکارڈنگ. ادھیاتمک جگت اور بھوتک جگت میں کیول یہ انتر ہے کہ ادھیاتمک جگت میں سب لوگ گرو کے نردیشن میں کاریہ کر رہے ہیں, یسے پرسادات بھگوت پرساد تترادی دکشاد اتی ولبھ سے, دکشتا سے کام ہوتے ہیں اور وہ ان کو انسٹرکشن دیتے ہیں, وہ کرتے ہیں سب رادھا کرشن کی لیلاؤں کا سنیوجن. سب کو پتا ہے کہ ہم داس ہیں, وہاں بتانا نہیں پڑتا. اس بھوتک جگت میں ہر ایک کو بتانا پڑتا ہے کیا جیوہر سوروپ ہے کرشن نتیہ داس, یہ ہم جیووں کا سوروپ ہے کرشن کا داس ہونا, اور کیونکہ جنموں جنموں سے یہاں پر ہیں تو ہماری استھتی یہاں پر باس والی ہے, مطلب بھوگی, کہ ہم بھوگنا چاہتے ہیں جیسا میں چاہتا ہوں, جیسا میرا من کہتا ہے میں ویسا کروں گا, میں اپنی اچھاؤں کو پورا کرنا چاہتا ہوں. تو اپنا من اور اپنی بدھی جو جنموں جنموں سے ہماری چل رہی ہے, جس کے کارن ہم لوگ اس سنسار میں ہیں, تو جب ہم یہ سمرپت کر دیتے ہیں, بھگوان نے کہا میں ارپتو منو بدھی, آپ اپنا کرم کرو لیکن من اور بدھی مجھے ارپت کر دو, ارتھات میرے اکارڈنگلی چلو. اس لیے انت میں بھگوت گیتا کے انت میں ارجن نے مانا کہ ہاں اب جو ہے میری بدھی واپس آ گئی ہے. کیا شلوک ہے وہ, نشٹ موہ سمرتی لگنا, میرا موہ جو ہے اس سنسار کے پرتی جو تھا وہ اب نشٹ ہو چکا ہے, سمرتی لبدھ ہوا, اب جو ہے میرے کو بدھی آ گئی, سمرتی میری واپس آ گئی ہے. करिष्ये वचनम तवा, अब आप जैसा बोलेंगे मैं वैसा करूं। मतलब भगवत गीता में जहां से अर्जुन ने बोलना शुरू किया और जहां आखिरी में बोला, पहला श्लोक था कार्पण्य दोषो उपहत स्वभाव, कि मेरे से मुझे मालूम नहीं पड़ रहा, समझ नहीं आ रहा क्या करूं, मेरा हाथ कांप रहा है, मुझे अपनी कर्म क्या है, मुझे क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, मैं पूरी तरह विचलित हूं, मुझे गाइड कीजिए। शादी माम त्वाम प्रपन्न, मैं तुम्हारी शरण में आता हूं, यश श्रेय जो भी मेरे लिए अच्छा है वो मुझे बताएं, भूमितंग निश्चितम भूमितंग मुझे बताएं। और फिर पूरी कन्वर्सेशन क्वेश्चन आंसर हुआ और अंत में उन्होंने कहा कि अब मेरा सारा तरह का मोह नष्ट हो गया है, अब आप जैसा बोलेंगे मैं वैसा करूंगा, ये पूरी भगवद्गीता का निचोड़ दो श्लोकों में एक साधक के लिए इस रूप में। और बीच में जितने भी इंस्ट्रक्शंस हैं वो इन दोनों के द्वारा ही निहित होती है, अर्थात लास्ट जो करिष्यम वचनम तवा जब बोला, पूर्ण शरणागत जब व्यक्ति हो जाता है तो वो इस स्थिति पर पहुंचता है कि हाँ अब जैसा आप बोलेंगे मैं करूं। तो इस प्रकार जो है, इस प्रश्न से लिया था शुरुआत की थी हमने, यहां पर नारद मुनि और लैनेज की बात कर रहे थे हम, तो इसी प्रकार प्रभुपाद जी भी कहते थे कि हम लोग जो हैं उसी लैनेज में आ रहे, प्रचारकों को चाहिए कि हम लोगों को भी यही वरदान या श्राप, सुगर श्राप जैसे बोलते हैं कि मिला है, जिसमें कि हम लोग एक जगह टिक नहीं सकते, तो प्रभुपाद जी ने पूरे संसार भर में प्रचार किया था। और यहां पर भगवान के सांश और उसकी भी बात की गई है कि जितने भी देवता देवतागण भी हैं ये भी भगवान के अंश हैं, भिन्न अंश बोल सकते हैं इन्हें, जैसे कि प्रभुपाद जी बता रहे हैं, जो कि इस सृष्टि को चलाने के लिए। भगवान श्री कृष्ण अपने धाम में अपने जो उनके चार विशेष गुण हैं, लीला माधुर्य, रूप माधुर्य और वेणु माधुर्य और रूप लीला एक और प्रेम माधुर्य, तो ये चार जो हैं विशेष क्वालिटीज हैं भगवान के अंदर, जो कि और विष्णु अवतारों में नहीं पाई जाती। तो प्रेम माधुर्य में क्या है कि भगवान अपने अंतरंग पार्षदों के साथ सदैव घिरे रहते हैं, यशोदा मैया, गोपाल, नंद महाराज और उनके दास्य भाव के सारे सखा, गोपियां इत्यादि, गोपतृष्ट, उसमें एक श्लोक आता है ना, परिवेष्ट, तो परिवेश में तो घेरे रहते हैं हमेशा इस प्रकार के लोगों से, गोपियों से इत्यादि, तो इस प्रकार के प्रेम संबंध उनके साथ चलते रहते हैं। वो कृष्ण आध्यात्मिक जगत में जो सदैव इन प्रमुख गुणों के साथ अपने भक्तों के साथ जो डीलिंग कर रहे हैं, वो कृष्ण अपने इन्हीं प्रेममयी प्रसंगों के कारण, अपने भक्तों के प्रेम संबंधों के कारण अपने को कभी भी शपथ लेते हैं, वो शपथ पहाड़ी है ना एक, वहां पर वृंदावन में काम्य वन में है, जहां पर भगवान श्री कृष्ण ने खड़े होकर बोला था कि मैं वृंदावन छोड़कर एक कदम भी कभी बाहर नहीं निकलूंगा, हमें दर्शन किया उसका, तो ये शपथ ली थी कि वृंदावन वृत्यज्यम पादेकम न गच्छति, मैं वृंदावन से बाहर नहीं जाऊंगा, इसी कारण से क्योंकि इतना प्रेम करते हैं मेरे साथी, मेरे को सब कुछ छोड़कर अपने स्वार्थ की बू भी नहीं है, जैसे कहते हैं कि अपने के लिए कुछ भी नहीं लेकिन सब कृष्ण के लिए, कृष्ण को कब क्या चाहिए, कृष्ण की क्या प्रसन्नता है, कृष्ण की किस में क्या इच्छा है, उन इच्छाओं को पूरा करने के लिए वो सारे के सारे गोपाल, बड़े हों या छोटे हों, साथ के हों, सब लोग भगवान की सेवा में लगे हों। तो ये सब इनका प्रेम देखकर, इनका त्याग देखकर भगवान इनको छोड़ना नहीं चाहते, क्यों जाऊं मैं, तो वो कृष्ण इसलिए कभी बाहर नहीं निकलते। लेकिन फिर बोलते हैं यदा यदा ही धर्म से ग्लानिर्भवति भारत, मैं आता हूं जब जब धर्म की हानि होती है, अधर्म का बढ़ावा होता है तो मैं आता हूं भक्तों की रक्षा करने के लिए, तो किस तरह आते हैं फिर भगवान, ये जो एक्सटेंशन हैं भगवान के जितने भी हैं, जितने भी अवतार हैं, अंश अवतार, भिन्न अंश, कलाएं इत्यादि, सारा का सारा भगवान दर्शाते हैं और इस समय भी पता नहीं कहाँ पर किस ब्रह्मांड में भगवान कृष्ण इस समय लीला कर रहे होंगे। और फिर इन्हीं लीलाओं की वजह से, जैसे कि भगवान आध्यात्मिक जगत में, वहां तो नहीं असुर होते ही नहीं, वहां तो एग्जिस्ट नहीं करते असुर, लेकिन जो भौम लीला होती है उस लीला में भगवान हर प्रकार के रसों का आस्वादन करते हैं, और अपने ही भक्तों के साथ जब यहां प्रकट होते हैं तो बाल लीलाएं, असुरों का नाश, ये सब करते हैं। और यहां की लीलाएं इसलिए कई बार बताई जाती हैं कि आध्यात्मिक जगत से भी ज्यादा मधुर है, क्योंकि यहां पर ज्यादा वैरायटी है। वो बात अलग है कि भगवान ने यहां पर केवल ट्रेलर दिखाया हर चीज का, रास लीला का एक छोटा सा ट्रेलर है, राधा रानी के साथ तो बहुत कम रहे हैं भगवान भौम लीला में, 100 वर्ष का विरह साथ में है। तो जो गौड़ीय वैष्णव है वो बिल्कुल ठीक भी मानते इस चीज को, क्योंकि इतना समय, इतना लंबा समय जो है भगवान श्रीमती राधा रानी को छोड़कर गए। तो बस फिर भी यहां पर इसलिए वैरायटी है लीलाओं की कि जन्म होते ही भगवान ने नाना प्रकार के असुरों को मारना शुरू किया, वो चोरी की लीलाएं भगवान श्री कृष्ण की है ना, और वो गायों को लेके जाना, और फिर वहां पर भी कोई ना कोई असुर मिलना रोज, किसी ने किसी को मारना रोज, फिर वापस आना। तो लगभग 8 वर्ष तक वृंदावन में रहे। तो वो लीलाएं और यहां की लीलाएं, इस भौतिक जगत की हमारी लीलाएं, हमारी इन लीलाओं को जो कि पूरी तरह काम क्रोध लोभ से ग्रस्त है, तीनों गुणों के अंडर में है, इन लीलाओं को जो कि हम लोग कर रहे हैं इस भौतिक जगत में बद्ध होकर, भगवान अपने अवतारों के द्वारा ये दिखाना चाहते हैं कि आप मेरी लीलाओं को देखो क्या करा मैंने। सृष्टि करते हैं ब्रह्मा जी को, भगवान ने जब ये सृष्टि करी अपने एक्सटेंशन के थ्रू, तो ब्रह्मा जी के जो गर्भ दिखाए विष्णु के नाभि से जो कमल निकला, तो ब्रह्मा जी उसमें उत्पन्न हुए, और ब्रह्मा जी भी अकेले ही थे, भगवान ने उत्पन्न किया, तो आगे सृष्टि करने को कहा। और फिर ब्रह्मा जी से साफ साफ कहा भी भगवान ने कि बहुत मुश्किल वास्तव में लगता है लोगों को, आप अपने कहा कि आप इन मटेरियल एक्टिविटीज में लगे रहिए, रजोगुण के द्वारा, उनको रजोगुण का अधिष्ठाता बोलते ना, तो रजोगुण के द्वारा आप सृष्टि की रचना कीजिए, अपने सारे कार्यों को कीजिए, लेकिन आप हमेशा इसके प्रभाव से दूर रहेंगे। और उनको कहा कि अगर आप इसी प्रकार अपनी सेवा में लगे रहे, तीसरे स्कंद में कुछ श्लोकों में पूरी चर्चा है, अगर आप लगे रहे तो सबसे बड़ी बात क्या है कि आप मेरी प्रेजेंस को देख पाएंगे हर एक में, हर जीव में, और इन सारे कार्यों को या सभी जीवात्मा को मुझ में देख पाएंगे, अपने को भी आप मुझ में देख पाएंगे, जिसे सेल्फ रियलाइजेशन और गॉड रियलाइजेशन की बात करते हैं। जब व्यक्ति अपनी भौतिक इच्छाओं को त्याग देता है, जब साधक भी आगे बढ़ता है भक्ति में, तो धीरे धीरे जो है भौतिक इच्छाएं समाप्त होने लगती हैं, फिर सटल इच्छाएं वो भी समाप्त होने लगती हैं। तो ग्रॉस और सटल दोनों प्रकार की जब इच्छाएं समाप्त होने लगती हैं, निष्ठा के स्तर पर उससे अधिक, तब व्यक्ति इन सब चीजों को रियलाइज कर पाता है जो ब्रह्मा जी को बता रहे हैं कि किस प्रकार आप मुझ में हर चीज को देखोगे और हर वस्तु में मुझे देखोगे, गॉड रियलाइजेशन। फिर आगे बढ़ेंगे और उसके बाद भाव की स्थिति का भी वर्णन कर रहे हैं कि किस प्रकार जब आप ऐसी स्थिति पहुंचेंगे तो आप मेरा दर्शन कर पाएंगे और भाव के जो सभी लक्षण होते हैं वो प्रकट होंगे आपको। इस प्रकार जब आप दोनों शरीर, भौतिक शरीर और सटल जो बॉडी है, इन दोनों से अगर आप दूर होते हैं, अर्थात सारी मटेरियल डिजायर से दूर होते हैं, तो और अपनी इन सेवाओं को करते रहते हैं, तो अंत में जो है आपका जो स्वरूप है आध्यात्मिक जगत में मेरे साथ, वो रिवील हो जाएगा सेवाओं को करते हैं। तो भगवान ऐसा एश्योरेंस अपने उन भक्तों को दे रहे हैं जिन्होंने रिस्क उठाकर ये सब चीजें की। तो और इतना बड़ा एश्योरेंस ये दिया है कि खासकर जैसे कई बार हमारा जैसे इतना बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है, इसमें कितने मैनेजमेंट की आवश्यकता पड़ती है हर समय, हर समय कहीं ना कहीं मैनेजमेंट चाहिए चाहिए, हर व्यक्ति को मैनेजमेंट चाहिए। तो जब हम लोग इसको ठीक प्रकार से करने का प्रयास करते हैं, कल कोई मुझे व्यक्ति मिले तो वो बता रहे थे कि प्रभु जी, उन्होंने बोला कि जैसे हम लोग जिन कंपनीज में भी काम करते हैं तो वहाँ के मैनेजमेंट से अच्छा मैनेजमेंट हमें इस्कॉन का मैनेजमेंट देता है कि कितना ठीक प्रकार से हर चीज़ मैनेज है। और कई लोगों ने पहले भी बताया ये चीज़, कारण यहाँ पर जो है ये जो संस्थान है ये कोई साधारण संस्थान नहीं है कि यहाँ पर अगर कोई मैनेजमेंट ठीक नहीं कर रहा, कुछ नहीं कर रहा तो उसको नौकरी से निकाल दिया जाएगा करके। ऐसे यहाँ पर सभी भक्त लोग और सभी भक्तों का उद्देश्य कृष्ण है, केंद्र बिंदु कृष्ण है, और सबके साथ कवरिंग, इस मैनेजमेंट की कवरिंग ऊपर नीचे सभी कुछ भक्ति से कवर्ड है। तो ये सारा का सारा भक्ति का ही एक अंग है। मायापुर में यानी वृंदावन में कई भक्त लोगों को जब प्रभुपाद ने सेवा में लगाया मंदिर, क्योंकि सीमेंट चोरी करके ले जाते थे मंदिर बनाने, सीमेंट पहले तो गवर्नमेंट से अलाउ होता था, इतनी मुश्किल से सीमेंट आता था मंदिरों में, और वो भी आसपास के चोर रात को उठा के ले जाते थे कई बार सामान चुरा के। तो भक्त लोग बेचारे रात भर जागते थे उस सीमेंट की रखवाली करने के, सुबह गिनते थे, रात को गिनते थे, कई बार गिनते थे। तो कई बार भक्तों को लगता था यार वृंदावन में आया हूँ, चैंटिंग करनी चाहिए, माला बढ़ानी चाहिए, मैं सीमेंट बढ़ा रहा हूँ, सीमेंट की काउंटिंग कर रहा हूँ। तो प्रभा से पूछते थे कि प्रभा के ये सीमेंट के बैग गिनना ये भक्ति है? प्रभा ने कहा हाँ, ये भी भक्ति का है। कई बार जब न्यूफाइट स्टेज में होते हैं लोग, हम सब लोग, तो हर सेवा को हम लोग छोटी बड़ी ऊपर नीचे इस तरह लेके चलते हैं, ये सेवा छोटी, ये सेवा बड़ी, ये और अच्छी, वो वाली मिल जाए, तो इस प्रकार की स्थिति रहती है। जैसे एक बार महानिधि महाराज ने भी बताया था कि जब वो न्यू भक्त आश्रम में ज्वाइनिंग की थी उन्होंने, तो टॉयलेट साफ करवा रहे थे उनसे, तो उन्होंने कहा कि यार ये सब, तो उन्होंने कहा हाँ ये भी भक्ति का कर्म है, और ये करके करके आप भगवान के धाम चले जाओगे। तो कई बार लगता है शुरू में कि जैसे प्रभुपाद जी एक बार मायापुर में गए तो स्मेल सी आ रही थी, तो लकड़ी से दरवाजा खोला, देखा टॉयलेट बड़े गंदे हैं, तो वहां पर कौन सा श्लोक गुरु अष्टक का बोला, श्री विग्रहाराधन नित्यनाम श्रृंगार तन मन, कि जिस प्रकार विग्रहों के श्रृंगार के लिए हम लोग इतना उत्सुक रहते हैं, उसके लिए 6 बार 7 बार भोग बनाते हैं, पूरी स्वच्छता का ध्यान रखते हैं, है ना? तो जिस प्रकार इतना सा केवल एरिया साफ रखने का नहीं है, इस मंदिर का हर कॉर्नर, समझ रहे हैं, हर वो जगह साफ रहनी चाहिए, क्योंकि पूरा का पूरा मंदिर है, ये पूरा का पूरा आध्यात्मिक है। आज से 3 या 4 साल पहले या 5-6 साल पहले की बात है, हम लोग वृंदावन में गए थे, हमारा ग्रुप गया था, तो मुझे अहिंद्र प्रभु मिले थे, तो उन्होंने कहा इफ यू हैव फ्री, कुछ टाइम है आपके पास तो आओ कुछ सेवा करने के लिए। मैं कहा मेरे साथ कुछ लोग और भी हैं, कहते सबको लाओ, रुक्मिणी कृष्ण जी को भी लेकर गया था मैं और भी मेरे साथ लोग थे, तो कई लोगों को लेकर गए। कहाँ पर थे मैं ढूंढने लगा कहाँ पर है, तो कहीं पर आवाज आ रही, टॉयलेट की तरफ आवाज आ रही थी, तो क्या कर रहे थे, वो मुंह पे कपड़ा बांधा हुआ था और हाथ में एक कटर मशीन थी, टाइल्स की कटर मशीन, और सारी टाइल्स को काट रहे थे और टॉयलेट की टाइलें अपने हाथ से फिक्स कर रहे थे, सबसे सीनियर ब्रह्मचारी वृंदावन आश्रम के। मैं कहा हम लोग आ गए, हमें कुछ सेवा, कहते हाँ आ जाओ, तो मैं टॉयलेट्स में ले गए, ये सारे टॉयलेट्स दिखाए, कहते ये पड़ा पेंट, जरा ब्रश बस करो, सब मिल के करो हमले मारना शुरू करें, करने के बाद हाथ थक भी गए, कभी करे नहीं थे ऐसे काम, बट फिर भी करे। तो जब गए जाने लगे तो मैंने उनको बोला आए देखने के लिए, हाँ सब ठीक है, ये ठीक नहीं हुआ ठीक। मैं कहा प्रभु जी क्योंकि ये ना दीवार थोड़ी ऊपर नीचे है, मतलब प्लेन पूरी नहीं है। कहते नो, ये जो टॉयलेट्स हैं, ये व्हाइट हाउस जो अमेरिका में है ना, उससे ज्यादा दिव्य टॉयलेट्स हैं, क्योंकि राधा श्याम सुंदर के मंदिर के टॉयलेट्स, चेतना का उनका विकास देखे। मुझे लग रहा है दीवार टेढ़ी है इसलिए ठीक नहीं हो रहा हम, है ना? तो जो भक्त लोग कुछ समय के बाद आ जाती है समझ चीजें, अगर वो ठीक प्रकार से प्रयास कर रहे हैं, सही चेतना में प्रयास, सही मार्गदर्शन के द्वारा जब व्यक्ति भक्ति करता है तो जल्दी रियलाइज करता है सब चीजों को, और नहीं तो इन्हीं सब चीजों को समझने में काफी समय भी लगता है, काफी समय लगता है, वर्ष लग जाते हैं। तो कहने का मतलब है कि अगर इस प्रकार हम करते हैं ठीक मार्गदर्शन भक्ति का, तो निश्चित रूप से गारंटी है कि शास्त्र झूठ नहीं बोल रहे, भगवान ब्रह्मा जी की प्रेरणा से खुश होकर उनको पूरा का पूरा एश्योरेंस दे रहे हैं कि उनको धाम ले जाने का, उनको रिवील करने का सब कुछ। और यहां पर भी कह रहे हैं भगवान कि अगर जितने प्रकार की तपस्या ये जो भी हम करते हैं, रिचुअल्स करते, जो भी हम लोग करते हैं, कहते हैं ये भी एक्चुअली वास्तव में मेरी कॉजलेस मर्सी है, अन्यथा हम लोग क्या कर सकते हैं। जैसे कि अगर किसी व्यक्ति को एक सड़क है जो जा रही है स्लॉटर हाउस की तरफ जा रही है, नहीं मीट शॉप की तरफ जा रही है, वाइन शॉप की तरफ जा रही है, उसी तरफ एक दूसरी रोड और भी है जो मंदिर की तरफ आ रही है, तो ये भगवान की कह सकते हैं कॉजलेस मर्सी है कि स्ट्रीट लाइट लगी है, सड़कें साफ बनी हुई है, सब कुछ ठीक है, मार्ग साइंस लगे हुए कि यहाँ पर मंदिर, ये सब चीजें। तो ये कह रहे हैं कि ये मेरी कृपा है, यहाँ पर भी अगर आप आ रहे हो इसके लिए जो भी तपस्या त्याग कर रहे हो, ये मेरे धाम आने के लिए ये मेरी कृपा है कि मैंने इस तरह का साधन बनाया आप लोगों के लिए। तो आकर्षित कर सकते हैं हम लोग भगवान की मर्सी को, कृपा को, एक सरल भक्त बनकर। सरल भक्त, बड़ा भक्त नहीं, सरल भक्त। सरल भक्त जो सरल शब्द है ये बहुत गहरा शब्द है वैसे तो, और बहुत आसान भी है। रूपा जी एक स्टेटमेंट बोलते थे इसी से रिलेटेड कि मैं भूल गया उसको, इट्स वेरी डिफिकल्ट टू बी सिंपल, नहीं नहीं सिंपलिसिटी नहीं, दिमाग से निकल गया तुझे, कि जिसमें ये बोला कि बट हाँ भक्ति नहीं ये भी नहीं, टू बी सिंपल, इट्स वेरी डिफिकल्ट टू बी सिंपल, कृष्ण कॉन्शियसनेस इज वेरी डिफिकल्ट, इट्स वेरी सिंपल बट इट्स वेरी डिफिकल्ट टू बी सिंपल। कृष्ण भावना में बहुत सरल है लेकिन सरल रहना बड़ा मुश्किल है। ये था। और सरल का मतलब होता है कि ट्रांसपेरेंसी, जैसे अंदर है वैसे बाहर है, ऑनेस्ट है, जितना जैसा बोला वैसा करना, ये सरलता की निशानी है। भक्ति में इसका बड़ा उपयोग है। भक्त लोग अगर इस प्रकार अपने जीवन को जीते तो निश्चित रूप से भक्ति में आगे बढ़ सकते। यहाँ पर भगवान के अवतार जो वर्णन हो रहे हैं, ये सारी की सारी सृष्टि जो भगवान ने की और अपने ही अंशों को इस को चलाने के लिए लगाया, इसका केवल मात्र एक उद्देश्य कि सभी बद्ध जीवों को किसी न किसी तरह अध्यात्म से जोड़ना या उससे अट्रैक्ट करना, ताकि ग्रेजुअली वो इस लेवल पर पहुंच सकें ताकि वापस भगवान के धाम आ सके। हरे कृष्ण। किसी को भी प्रश्न तो पूछ सकते हैं। प्रोजी का प्रश्न, कहां पूजा का प्रश्न है कि कैसे हम गुरु के इंस्ट्रक्शंस को फॉलो कर सकते हैं अच्छे ढंग से, कहां हमसे दिक्कत रहती है। ऐसा है जैसे इसमें अलग अलग तरह से उत्तर है, जैसे कि कई बार हमारी संस्था जो है हजारों लाखों संस्थाओं में अगर कोई व्यक्ति देखने का प्रयास करता है उसकी प्योरिटी के हिसाब से, डिटी वर्शिप के हिसाब से, फिलोसफी के हिसाब से, तो एक पाएगा कि सबसे इम्पोर्टेंट यही जगह है। फिर जब यहाँ पर भी आते हैं हम लोग तो कई बार काफी लोग मंदिर में आते हैं जैसे, तो उनकी भी अलग अलग धारणा रहती है, अलग अलग उद्देश्य रहते हैं मन में, है ना। तो उसकी वजह से कई बार कई भक्तों को सही संग प्राप्त हो पाता और कईयों को नहीं मिल पाता। तो अब हम बैनर भी नहीं लगा सकते ऐसा कि कृपया अगर आए तो आप ठीक प्रकार से इसका संग करें, ऐसा भी नहीं कर सकते वैष्णव प्राप्त हो जाए। तो ये भी नहीं बोल सकते कि देखो प्लीज आप ऐसे मत करना वैसे मत करना, उनके पास मत जाना, केवल मेरे पास आना। ऐसा भी नहीं कर सकते। तो एक्चुअली ये सब चलता है हमारी इच्छा के ऊपर डिपेंड करता है कि हमें किस प्रकार का संघ चाहिए, हम चाहते क्या अपने जीवन से। अगर तो हम लोग मनोरंजन चाहते हैं तो मनोरंजन टाइप के दोस्त मिल जाएंगे हमको यहाँ पर। अगर कुछ इच्छाएं हैं तो वो इच्छाएं पूरी हो जाएंगी। ग्लोरिफिकेशन चाहते हैं तो ऐसे दिमाग में आइडियाज आएंगे कि आपको ग्लोरिफिकेशन भी होगा। और अगर सच में सिंसियरली हम चाहते हैं कि हम भगवान के भक्त बने तो सिंसियर इच्छाओं वालों को आराम से कोई ना कोई ऐसा भक्त मिलेगा जिससे वो आगे बढ़ सकते हैं। आपने कहा कि क्या सावधानी बरतनी चाहिए, तो सावधानी यही होती है भक्ति का जो समुदाय है या भक्ति का जो ये कल्चर है ये बहुत सिंपल कल्चर है। आध्यात्मिक जगत में वही लोग जा पाएंगे जिनके ऊपर मोहर लगी होगी ओके टेस्टेड, गुरु की मोहर लगी होगी, तो वो पीस ऊपर जाएंगे सारे। लेकिन उस स्तर का बनने के लिए थोड़ी सी तपस्या ज्यादा करनी पड़ती है। तपस्या वैसे कुछ भी नहीं है कि जो मेन स्ट्रगल होता है वो अपनी ही बुद्धि और अपने मन से होता है खाली, क्योंकि मन अगर एंटरटेनमेंट चाह रहा है, मन के अंदर कुछ और सुझाव आ रहे हैं, मन के अंदर कुछ और एंटरटेनमेंट टाइप की थिंकिंग है, तो उसके साथ बड़ा स्ट्रगल होता है। क्योंकि मन कहता है ये क्या कर रहे हो, ऐसा क्यों कर रहे हो, अब ये भी कर सकते हो वो भी कर सकते हो। तो वो भक्त को चाहिए कि वो ठीक प्रकार से जो जैसे हमने बताया पांच पहले अंग गुरुपाद आश्रय ले, शुरुआत में उसको चाहिए कि किसी न किसी भक्त के संरक्षण में भक्ति करे। एक बार एक एग्जांपल दिया था हमने, जैसे एक माता के किसी परिवार में संतान उत्पन्न होती है तो माता उसका कैसे ख्याल रखती है, हर क्षण वो उसकी गोदी में रहता है पहले कुछ महीने, इवन उसको गोदी से भी नीचे नहीं उतारने की कोशिश करती क्योंकि बस सुलाएंगी तो बिल्कुल गोदी में या उसके पास, इतना ध्यान रखा जाता है। तो उसी तरह ये भक्त की स्थिति है, जब वो मंदिर आता है या ज्वाइन करता है या भक्ति करने का प्रयास करता है तो उसे भक्तों के संरक्षण में बिल्कुल ऐसे रहना चाहिए, पूरी तरह सरेंडर। बच्चा जब एक साल का होता है थोड़ा सा मतलब थोड़ा सा बड़ा होता है तो माता उसको एक पलंग तक छोड़ देती कि अब पलंग पर जहां मर्जी जाए नो प्रॉब्लम, उसको मालूम है कि एक दो बार गिर चुका है, उसको मालूम है नीचे गिरूंगा चोट लगेगी, तो एक पलंग तक की उसको स्वतंत्रता दी। फिर थोड़ा और बड़ा होता है तो पूरे घर में कहीं भी खेलने कूदने की, पलंग पर चढ़ने की, सोफे पर चढ़ने की, नीचे उतरने की, लेकिन दरवाजा बंद रखते कि नीचे ना चला जाए बाहर ना चला जाए, अभी कमरे तक की स्वतंत्रता दी। बढ़ते बढ़ते उसकी मेच्योरिटी लेवल बढ़ने पर उसको स्वतंत्रता मिल रही है। फिर कुछ समय के बाद वो सीढ़ियों से नीचे भी उतरना शुरू करता है, वहां तक की स्वतंत्रता, लेकिन सड़क पर जाने की स्वतंत्रता नहीं मिलती। फिर और 5-7 साल का होता है तो सड़क पर जाने की स्वतंत्रता मिलती है, साइकिल चलाने की स्वतंत्रता मिलती है। फिर और बड़ा होता है तो 8 घंटे अपने से दूर रखकर था स्कूल में भेजते हैं, स्कूल से आना जाना वो स्वतंत्रता भी दी जाती है। बड़ा होता है तो कहां जा रहे हो बेटा, क्या कर रहे हो, बड़ी सारी टोक लगाते हैं, मतलब ये मत करना वो मत करना, तो पूछते हैं स्कूल में, पूछते हैं ना, मीटिंग्स होती हैं, कैसा चल रहा है हमारा बच्चा, हर कुछ इतनी स्वतंत्रता दी जाती है। विवाह के बाद भी स्वतंत्रता दी जाती है ना, कई बार नहीं देते चाबियां सारी अपनी कई कारण है, वो बात अलग है कि चाबियां खुद को प्यारी लगती हैं लेकिन नहीं देते, कई बार इसको दे दो लुटा देगा ये तो, है ना, बहू को नहीं सौंपते, बहू आज तुम नहीं है घर पे आई, ये सारी चाबियां तुम्हारे हाथ में, अच्छा सबको बांट देंगे ये लो आप लो। तो स्वतंत्रता दी जाती है मेच्योरिटी के हिसाब से। तो हम लोगों को भी जो भक्ति में आए, देखिए कोई भी अथॉरिटी या कोई भी गुरु कभी भी नहीं चाहेगा कि मैं इसकी हमेशा गर्दन पकड़ के अपने नीचे रखूं, इस तरह जल्दी मेच्योर हो लो, लेकिन जीवात्मा इतना ढीठ है, इतना जिद्दी है ये, क्योंकि जन्मों जन्मों से उसने ट्रेनिंग केवल यहां पर इंडिपेंडेंट रहने की रही है, लिए किसी का भी कहना नहीं मानूंगा, हाँ उसका कहना मानता है जो उसको इंद्र तृप्ति में सहयोग करता है। उस बॉस के सामने वो ऐसे खड़ा होता है, ऐसे खड़ा होता है, गालियां देता है, खबरदार अपनी शक्ल मत दिखाइए मेरे को, फिर अगले दिन सुबह नहा धो के 7 बजे पहुंचा होता है वहां पर, क्यों क्यों, क्योंकि वो 10,000, 20,000, 50,000 रुपए देता महीने के बाद, और वो पैसे लेकर वो क्या करता है, 8 घंटे या 10 घंटे के जंजाल से निकल के फिर 12, 5, 6 घंटे पर एंजॉय करने की कोशिश करता हूं। वहां पर उसका इंटरेस्ट है। अदरवाइज इतनी पॉलिटिक्स होती है ऑफिस में, हर व्यक्ति चेंज करना चाहता है अपना ऑफिस। यहाँ बड़ी पॉलिटिक्स है पूछी, यहाँ सैलरी कम है पूछी, यहाँ लोग अच्छे नहीं है, यहाँ पर सब मुझे ऐसे देखते हैं। हर व्यक्ति चेंज करना चाहता है, क्यों? कुछ भी ऐसा ठीक नहीं है। लेकिन क्यों सहता है, क्यों सहन करता है? क्योंकि पीछे क्या है, इंद्र तृप्ति की भावना है, या कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, वो भी एक इंद्र तृप्ति है। भारतीय जगत की तो रिस्पॉन्सिबिलिटी भी क्या है, इंद्र तृप्ति है। क्योंकि इंद्र तृप्ति करी वो रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं, अब उन रिस्पॉन्सिबिलिटी को सहो। तो इस प्रकार जीवात्मा जो है दास दिखाता है कि दास भाव दिखाता अपना, लेकिन वो कवर्ड होता है इंद्र तृप्ति से। लेकिन इतने दिनों से, इतने जन्मों से उसने यहां पर इंजॉय करने की स्थिति थी या रहा, करता रहा। अब जब आध्यात्मिक क्षेत्र में भी आता, प्रवेश करता है, तो उसकी वो मेंटेलिटी समाप्त ही नहीं होती। इसलिए क्लोज सुपरविजन में रहने का प्रयास। अगर आपको लगता है कि मेरी अथॉरिटी है, मेरे गुरु जी मेरा टॉर्चर कर रहे हैं या मुझे क्या बोलते हैं इसको एक्सप्लॉइट कर रहे हैं, हमको लग सकता है मेरे को चाहिए था रसगुल्ला, उन्होंने दे दिया समोसा खाने को, है ना, उनकी प्लेट में इतना भोग था, उसमें से मेरे को जो चीज चाहिए थी वो दी नहीं उन्होंने। तो कई बार लग सकता है कि मेरे मन के अकॉर्डिंगली मेरे साथ काम नहीं हो रहा, मेरे को सेवा नहीं मिल रही, है ना। तो उसमें कई कारण हो सकते हैं, है ना। जैसे एक बार बताते थे कि गुरु अगर कहे ना यहाँ खड्डा खोदो, मेरे ख्याल से यहाँ पर सोने का सिक्का दबा है। सोने का सिक्का यहाँ, चलो खोदता हूँ गुरु जी, खोद रहे। अच्छा यहाँ मत खोदो, अब इधर खोदो, पहले यहीं खुदवा लेते महाराज, फिर यहाँ खोदा, इधर भी शायद नहीं है, मेरे को लग रहा है इस तरफ होगा। पूरी धरती खुदवा दी लेकिन सिक्का नहीं मिला। तो गुरु क्या देख रहे हैं इसमें, इसका डेडिकेशन देख रहे हैं, कितना फॉलो करता है ये। भगवान श्री कृष्ण को यानी कि कई बार कथा सुनी होगी ना कि जाओ खेत को देख कर आओ, बरसात में कुछ वो ना हो जाए। व्यक्ति गया खेत में, देखा बांध टूटा हुआ, सारा का सारा पानी अंदर आ रहा है। कौन थे वो? अरुणी थे। वो लेट गए वहां पर पूरी रात, आए नहीं। तुम सुबह देखने गए तो देखा, रही क्या? कहते महाराज आपने कहा था कि इसकी रक्षा होनी चाहिए। कहते ये व्यक्ति है सबसे बेस्ट। एक्चुअली हम लोगों ने ना उस तरह की कहानियां पढ़नी बंद कर दिया। उनके अंदर ना उन कथाओं के द्वारा लोग बड़ी इंस्पिरेशन लेते थे और जीवन समर्पित कर देते थे। यहां भगवान, भगवान के इतने इतने भक्त, प्रहलाद महाराज, ध्रुव महाराज, किन किन महाराजों की कथा सुना दी। एकादशी रखते अगले दिन सात बस्ते व्यक्ति ऊपर होता, सात पांच पे तपस्या नहीं हो पाते। कहने का मतलब क्या है कि हमारी जो गुरु एक्सप्लॉइट नहीं करना चाहेंगे कि भाई तू मेरे अंडर ही रह जीवन भर। क्योंकि इसलिए जो अच्छे शिष्यों को बोला जाता है, कौन अच्छे शिष्य हैं, जो गुरु के मन को जानकर सेवा शुरू कर दे। ऐसी ट्यूनिंग होनी चाहिए। कहकर करने वाले सेकंड स्टेज के हैं, थर्ड स्टेज के वो जिनको कहते रहो तो बड़ी मुश्किल से करते हैं ऐसे, और फोर्थ स्टेज के जो कि मतलब उल्टा करते हैं उसका, तुम बोलो यहां खड्डा खोदो, वो क्यों नहीं खोदो, मार्केट से सिक्का महाराज ये लो, खड्डा कौन खोदे, आजकल हाईटेक जमाना है। नहीं, ऐसे नहीं। ये हैं छोटी छोटी चीजें, अब हंस तो रहे हैं इस बात पर, लेकिन अगर इस हंसने के बाद ये नहीं सीखे कि हमको कैसे करना है, कैसे जीना है, कैसे गुरु का संरक्षण प्राप्त करना है, तो फायदा नहीं है। तो इसलिए अपने को चाहिए कि पूरी तरह से निरीक्षण में रहने का प्रयास करें, तो उससे हमारा फायदा। और कोई प्रश्न? जब इधर जाए तो वहां हरे कृष्ण लिख दो, उधर जाए तो वहां हरे कृष्ण लिख दो। प्रश्न अच्छा है आपका। ये प्रश्न नए लोग भी पूछते हैं, 5 साल वाले भी पूछते हैं, 15 साल वाले भी पूछते हैं, आपकी कोई गलती नहीं है, वास्तव सबका ध्यान इधर उधर जाता है। बस वो है कि शुरू में ज्यादा जाता है, बीच वालों का थोड़ा कम जाता है, फिर बाद में अच्छे भक्तों का कहीं जाता ही नहीं, वो फिर कृष्ण तक सीमित हो जाते हैं। प्रयास करते रहिए, मन को सुबह से लेकर शाम तक जो हम दिखाएंगे, टेलीविजन इंटरनेट हम स्कैनिंग करते हैं ना सुबह से लेकर शाम तक, गाड़ी से भी जाते हैं देखते रहते हैं कुछ छूट ना जाए, बोर्ड्स पढ़ते हुए जाएंगे सब कुछ देखते हैं, तो वो स्कैन कर लेता है और फिर डिजायर्स बनती हैं, फिर इच्छाओं में फिर वही सब आता है। अब ये तो नहीं कह सकते कि आंखें बंद रखो, लेकिन हम प्रयास करना चाहिए जब गाड़ी से जा रहे हैं, या अपने को ज्यादातर स्पिरिचुअलाइज करने के लिए कमरा पूरा, हम गए हैं लोगों के घरों में, घोड़े बना रखे हैं, अर्धनग्न स्त्रियां हैं, कोई यूं कर रहा है कोई यूं कर रहा है, कुछ समझ नहीं आता, पेड़ पौधे लगा रखे हैं, वो ये चाइनीज है या ऑस्ट्रेलियन है, ये 2 करोड़ की पेंटिंग खरीदी है, कुछ भी नहीं है उसमें, तो ये सब चीजों में भगवान थोड़ी याद आएंगे। घर में दीवारों पर टेलीविजन भरे रहने चाहिए, इतने पास सीडीज महाभारत द्वारकाधीश कितने कितने सीरियल आ रहे हैं ना, इनसे देखो कोई दिक्कत नहीं है, उनसे अच्छा है जो कि दूसरी चीज है। तो इस प्रकार बार बार देखने से, बार बार सुनने से, बार बार पढ़ने से, जब इन सेंसेस के थ्रू, इन ज्ञानेंद्रियों के थ्रू कृष्ण अंदर जाएंगे, तो मन हमारा भर जाएगा उन सब चीजों से, तो फिर उसका स्मरण होगा। अभी नहीं होगा, अभी तो 24 घंटे में थोड़ी देर तुम अलग करते हैं, उससे बड़ा मुश्किल होता है, लेकिन प्रयास करते रहे तो फायदा होगा। हरिनाम में ज्यादा शक्ति है। और कोई प्रश्न? क्या चक्कर है? दूसरा संदेश उम्र छोटी इसलिए दी है, जैसे क्रिकेट मैच होता है ना 20 ओवर का मैच, में स्कोर ज्यादा बनते हैं कम ओवर में, तो ये भी ऐसे ही है, कम उम्र कम टाइम, जल्दी से हरे कृष्ण चैंटिंग करो, और कुछ यज्ञ नहीं करने को बोला, जैसे एक बार बिमला प्रसाद जी ने रियलाइजेशन शेयर की थी, हमने यज्ञ किया था यहाँ पर, डीटी इंस्टॉलेशन का था हमारे यहाँ, इनको कहा जा कूशा घास लेकर आओ, तो ये ढूंढ रहे हैं कूशा घास उगती कहाँ है जी, तो नाले के कोने में सब लोग बॉटल लेके पहुंचे होते हैं, तो वहां से उगी हुई घास लाएं तो वो भी कंटेमिनेटेड है, कई जगहों से लाएं, तो बड़ा ध्यान देना पड़ता था, किसी तरह ले आए, चलो ये लाए, कुशा ग्रास लाए, जो जो सामान चाहिए था, कल तो बड़ा शुद्ध सामान था ना, देसी घी के साथ हम आहुति डाल रहे थे, सब गंद है, वो जो होता है ना जो सामग्री मिलती है, पता नहीं क्या क्या डाला हुआ, घर का कूड़ा करकट भी लोग इकट्ठा करें, मिट्टी डाल, सब भरा हुआ है, कोई चीज शुद्ध नहीं है इस युग में। तो उन युगों में इन सब चीजों को इकट्ठा करने के लिए व्यक्ति को इतनी मेहनत नहीं करनी पड़ती, सारा वातावरण बड़ा शुद्ध था, ये कलयुग में तो यज्ञ जो कर रहा है वो तो मतलब टाइम वेस्ट कर रहा है अपना। तो इस कलयुग में उम्र छोटी है, युग का अंतराल छोटा है, इसका इसका केवल ये वो है कि जल्दी से व्यक्ति इधर जाए या उधर जाए, इंद्र तृप्ति करे और नर्क जाए, भक्ति करे और धाम जाए, ऐसा जल्दी शॉर्ट एकदम, ठीक है ना। इसलिए हरे कृष्ण महामंत्र हर युग में था, वो करते नहीं थे चैंटिंग, वो ध्यान लगाने में यज्ञ करने में ज्यादा आनंद आता था, मुश्किल था तब भी एग्जिस्ट तब भी करता था। अब तो हम प्रचार कर रहे हैं, प्रभुपाद जी ने जो बोला है होगा पृथ्वी में, तो उसकी वजह से हो जाएगा, हर एक के हृदय में भक्ति देवी स्थित हो जाएगी, आपसे लोग भक्त बनेंगे, प्रचारक बनेंगे, कहीं ना कहीं किसी न किसी को प्रचार करेंगे, तो हो जाएगा सब चक्कर। तो ये है कि छोटी उम्र इसलिए मिली हमें, जल्दी से कर लें सब चीज। और जो ये समय सारणी है 4, 32, 60, 64, 12, 96, 17, 28 ये बनी हुई है पहले से इस तरह, बस जिसमें कलयुग में सॉरी जिसमें कृष्ण अवतार लेते हैं उस समय थोड़ा सीरियस चेंज हो जाता है, मैंने कलयुग है ना, इसका कहते हैं जैसे द्वापर के बाद त्रेता आता था, लेकिन जिसमें कृष्ण आते हैं वो चेंज कर देते हैं, कोई लीला के कारण जैसा कुछ। ठीक है, और भी किसी कुछ अलग से आके पूछिएगा। ग्रंथ है श्रीमद् भागवतम की, हरिनाम संकीर्तन की निताय गौर प्रमाण।